समाचारों में तमिल शरण चाहने वाले परिवार के बिलोइला लौटने पर आंसू और खुशी। क्राउन रिसॉर्ट का 8.9 बिलियन डॉलर का अधिग्रहण लगभग पूरा और इंटरपोल ने जारी किया सत्येंद्रजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। 4 साल बाद इमिग्रेशन डिटेंशन से रिहा किए गए एक तमिल शरण चाहने वाले परिवार को दर्जनों मित्रों और समर्थकों ने क्षेत्रीय क्वींसलैंड बिलोइला में लौटने पर बधाई दी है। स्थानीय लोग नादिया सलिंगम परिवार को देखने के लिए हवाई अड्डे पर जमा थे। उतरने के बाद श्रीलंका में जन्मी मां प्रिया ने समर्थकों के प्रति हवा में चुंबन कर आभार व्यक्त किया। उनके दोनों छोटे बच्चों ने भीड़ को देखा और मुस्कुराया। नई लेबर सरकार ने परिवार को ब्रिजिंग वीजा पर बिलोइला लौटने की अनुमति दी है। उनके मामले पर अंतिम निर्णय लंबित है। परिवार के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए दोस्त ब्राउन डैंडल ने कहा कि बिलोइला समुदाय परिवार को वापस पाने के लिए आभारी है।
Today is the day where we prove that home will always be where the heart is. And today is the day that we prove that love really does conquer all.
न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन का कहना है कि प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीसी का चुनाव ऑस्ट्रेलिया के साथ पिछले कुछ तनाव बिंदुओं पर एक रीसेट का संकेत देता है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने श्री एल्बनीसी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुश्री आर्डन का कहना है कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी का दृष्टिकोण अपना रही हैं और अपराधियों के डिपोटेशन सहित पैसिफिक प्राथमिकताओं पर काम कर रही हैं। वो कहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड के लोग एक महत्वपूर्ण मुद्दा हैं और वो अधिक पारस्परिक व्यवहार की मांग कर रही हैं ताकि उनके नागरिकों को निर्वासित नहीं किया जा सके।
But also ensuring there is a realistic and secure pathway to permanent residence and citizenship for those who need it in Australia as well. These are not new issues in the relationship, but this is a new government.
माइग्रेशन एक्ट की धारा 501 फेडरल सरकार को गैर नागरिकों के लिए वीजा रद्द करने की अनुमति देती है जिन्हें एक वर्ष से अधिक जेल की सजा सुनाई गई है। एंथनी एल्बनीसी का कहना है कि धारा 501 बनी रहेगी लेकिन उनकी सरकार इस पर विचार करेगी कि इसे भविष्य में कैसे लागू किया जाए। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीसी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राष्ट्र को जलवायु लक्ष्यों का एक अधिक महत्वाकांक्षी सेट प्रस्तुत करेगा और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बढ़ाएगा। एक संयुक्त प्रेस में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री के साथ बोलते हुए श्री एल्बनीसी ने कहा कि जब जलवायु परिवर्तन नीति की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऑस्ट्रेलिया की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत काम करना है। उन्होंने पूर्व गठबंधन सरकार पर न्यू साउथ वेल्स में स्नोई हाइड्रो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो लगभग 19 महीने की निर्माण देरी का सामना कर रहा है इसके सहित पर्यावरण पर निष्क्रियता का आरोप लगाया।
The previous government had said that Snowy Hydro should be up and running effectively around about this time. We now know that there'll be a blowout. This isn't surprising, given the government on a range of areas, the former government, whether it be fiscal positions, whether it be delivery of projects, it was always about the announcement, never about the delivery.
स्नोई हाइड्रो परियोजना एक नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना है जिसे मांग पर ऊर्जा संसाधन प्रदान करने और बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना में 27 किलोमीटर सुरंगों के माध्यम से 2 मौजूदा बांधों तेंतागरा और टेलीबेंगो को जोड़ने और एक नया भूमिगत बिजली स्टेशन बनाने का काम शामिल है। विकलांग एडिलेड महिला एन मैरी स्मिथ की देखभाल करने वाली कंपनी के दो निदेशकों पर आपराधिक उपेक्षा के कारण मौत का आरोप लगाया गया है। सेरिब्रल पॉल्सी के साथ रहने वाली सुश्री स्मिथ की दो साल पहले अप्रैल 2020 में गंभीर दबाव घावों से सेप्टिक शॉक और मल्टी ऑर्गन फेलियर से मृत्यु हो गई थी। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने इंटेग्रिटी केयर और कंपनी के दो निदेशकों पर आपराधिक उपेक्षा के कारण मौत का आरोप लगाया है और स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्य का पालन करने में विफल रहने के कारण मृत्यु, गंभीर चोट या बीमारी के जोखिम से अवगत कराया है। साउथ ऑस्ट्रेलिया पुलिस डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट डेस ब्रे का कहना है कि सेफ वर्क साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ एक संयुक्त जांच से ये आरोप लगे हैं।
The next stage of this investigation will be finalising the brief of evidence against those charged, and we expect that that will take about 3 months. I can say that we're extremely grateful for the support of the community, for those people from Integrity Care, employees who have assisted us.
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के गेमिक नियामकों द्वारा बिक्री पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद अमरीकी निजी इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन द्वारा क्राउन रिसोर्ट का 8.9 बिलियन डॉलर का अधिग्रहण होने के करीब है। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित खरीद को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। अंतिम अनुमोदन फेडरल कोर्ट द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। क्राउन पर कई जांच पूछताछ हैं जिसमें व्यापक विफलताएं मिली हैं, जिसमें इसके पर्थ और मेलबर्न कैसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के रेसिंग और गेमिंग मंत्री टोनी बूटी का कहना है कि ब्लैकस्टोन को कड़ी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होगी, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जिम्मेदार जुआ गतिविधियों की रिपोर्टिंग शामिल है। भारत में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों में 7,584 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके साथ ही वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 36,267 हो गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दो हफ्ते में सक्रिय मरीजों की संख्या 8 गुना बढ़ी है। दैनिक सकारात्मक दर 2.26% और साप्ताहिक सकारात्मक दर 1.50% दर्ज की गई है। इंटरपोल ने सतिंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। गोल्डी बरार ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी बरार के फिलहाल कनाडा में होने की बात कही जा रही है। इंटरपोल ने बब्बर खालसा के हरविंदर सिंह रिंदा के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। रिंदा मोहाली लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स अटैक समेत पंजाब और उत्तर भारत के कई हमलों में वांटेड है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 71 सेंट और भारत के 55.26 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में सैम कर को उनके उल्लेखनीय सत्र के लिए एक और प्रमुख फुटबॉल पुरस्कार वर्ष की महिला खिलाड़ी यानी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। केर पहले ही महिला सुपर लीग के शीर्ष स्कोरर के रूप में गोल्डन बूट भी जीता है और उन्हें फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। यूके में एक वरिष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियन केर ने अपने गोल्डन बूट खिताब की रक्षा के लिए लीग में 20 गोल किए। 26 वर्षीय का कहना है कि वो बहुत ही सम्मानित महसूस कर रही हैं।
Yeah, it's a massive honour. I think whenever you're voted by your peers, I think that's the highest honour as a player. So, it's an amazing feeling.
और अब मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में बौछारें, अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री। एडिलेड में बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। मेलबर्न में बौछारें, अधिकतम तापमान 13 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। होबार्ट में बौछारें और हवाएं चलेंगी, अधिकतम तापमान 11 डिग्री, न्यूनतम 4 डिग्री। कैनबरा में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 10 डिग्री, न्यूनतम 1 डिग्री। सिडनी में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। ब्रिस्बेन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 6 डिग्री। और डार्विन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।